शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज बहुत बड़ी श्रीमत दी है। जिस श्रीमत का अगर हम पालन करेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत प्राप्ति दूंगा। कौन सी है वो श्रीमत? दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य कितनी आशाएं रखते हैं और उन आशाओं को पूर्ण करने लिए क्या नहीं प्रयत्न करते हैं। भक्ति भी करते हैं, गुरुओं के पास भी जाते हैं, आशीर्वाद भी मांगते हैं और फिर क्या आशीर्वाद मिलती है? आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। तो अलग अलग के पास जाते हैं, अलग अलग आशीर्वाद लेते हैं, पर बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम सबको एक साथ आशीर्वाद देने। आयुष्मान भव भी होंगे, पुत्रवान भव भी होंगे, धनवान भव भी होंगे, सब होंगे, लेकिन उस नई दुनिया के लिए। जैसे कोई पुराना जहाज होता है, वो डूब रहा है, उस डूबते हुए जहाज में कोई आश नहीं रखी जाती है। पुराना मकान होता है, अब उसको सजाने में नहीं हम लगते हैं, क्योंकि पता है ये कभी भी टूट सकता है, तो उसके लिए नया करते हैं, नए में सब कुछ करते हैं, पुराने से दिल हट जाती है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अब सब नई दुनिया से जोड़ो, इस पुरानी दुनिया की कोई आश मत रखो, बस एक ही आश रखो। कौन सी आश? कि हमें पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना है, बस यही एक आश रखो। तो पावन बनने की आश रखो, उसके लिए सब विकर्म विनाश करने हैं। तो बाबा की याद से ये विकर्म विनाश होंगे, वो लक्ष्य रखो। बाकी बाबा कहते हैं ये सब देखते हुए नहीं देखो। तो कितनी बड़ी श्रीमत है ये भगवान की, अब हम कितना पालन करते हैं वो हम अपने आप से पूछें। तो आज 18/7/2026 है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। कितनी बड़ी श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है, पता है विनाश होनी है। अर्जुन भी कितना मोह रख के बैठा था सब में, तो भगवान ने क्या कहा है? अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, अब मुर्दों से क्या यारी, मुर्दों में क्या आश रखेंगे? क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है संगम पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। एक आश रखो बस, और वो एक आश रखी तो सारी जो भी आशाएं हैं सब पूरी हो जाएगी। तो प्रश्न है संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी, 21 जन्मों के लिए। उत्तर कौन सी है वो एक आश? हमें पावन बन, बाप को याद कर, उनसे पूरा वर्षा लेना है। ये एक आश रखो, कौन सी? हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है, सिर्फ यही आश रखो। इसी आशा के साथ, इसी आश से सदा ही के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। ये एक आश रखी तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, ये सब वरदान मिल जाएंगे। खाली आशाएं नहीं पूरी जाएगी, ये वरदान के रूप में मिलेगा। मनुष्य आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, ये तो भगवान वरदान के रूप में ये सब दे देगा। सब वरदान मिल जाएंगे, सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। तो यहां की मत आश रखो। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। आशीर्वाद तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर करो, जो मैं श्रीमद देता हूं उसका पालन करो, यही आशीर्वाद अपने ऊपर करो। पर बाबा वरदान देते हैं, अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्वान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो जाएगी। वहां पुत्र भी होगा तो वो भी सुख देने वाला होगा। या अगर चलो ये मांगते भी है पुत्र हो, पर पुत्र वो सुख देगा, क्या करेगा कुछ पता तो है नहीं, सब कर्मों का हिसाब किताब है। क्या पता वो कर्मों का हिसाब किताब चुपचू करने के लिए पैदा हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां तो पुत्र भी जो होगा वो भी सुख देने वाला होगा। यहाँ भी जो बच्चे हैं, यहाँ भी जो बच्चे हैं लौकिक में, दुख देने वाले हैं, सब दुख देने वाले। सतयुग में जो बच्चे होंगे सब सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्वान धनवान भी बनेंगे, हाँ सब बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। अंडरलाइन, इस कलयुगी दुनिया की कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है, धन की भी कामना नहीं रखनी है। बहुत धन हो, अच्छी बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। मैंने देखा है कई भाई बहने, हाँ अभी प्रमोशन मिल रहा है लेकिन ट्रांसफर के साथ मिल रहा है, तो वो कहते नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रमोशन ट्रांसफर नहीं चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। तो ट्रांसफर भी नहीं लेते, प्रमोशन भी नहीं लेते, संतुष्ट हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वो तो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कई आते हैं हमारे पास, कई एक प्रश्न करते हैं, हमको ट्रांसफर भी मिल रहा है, प्रमोशन भी मिल रहा है लेकिन दूसरे देश में, तो मैं जाऊं? हाँ प्रश्न करते हैं, तो क्या जवाब दें हम? जाएं? हम कहते क्यों जाते हो, सब वापस आना है भारत में, क्यों वहां जाते हो, तो सब डूबने वाली बेरियां हैं। तो इसीलिए हम तो मना करते हैं, बाकी उनकी मर्जी। तो बच्चे जानते हैं जास्ती लोभ में नहीं रहना है, जास्ती धन होगा तो वो तो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो, कौन सा दान बाबा मांगते हैं, ये पांच विकारों का। हाँ, भक्ति मार्ग में कहानी आती ना, एक व्यक्ति गया बहुत धन ले, बहुत धन चढ़ाया, बहुत सुंदर सुंदर फूल चढ़ाए, बहुत सुंदर मिठाइयां रखी, बड़ी अच्छी अच्छी। तो भगवान उनके आगे प्रकट हुए और भगवान ने कहा ये सब हमको नहीं चाहिए, ये तो मैंने ही तो दिया है, मैंने ही तो दिया है, ये क्या मुझे दे रहे हो, मुझे वो दो जो मैंने नहीं दिया है। अब क्या नहीं दिया है भगवान ने हमको, ये विकार नहीं दिए तो वो हमको दो, भगवान तो वो मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांगते। तो बाबा कहते कौन सा दान दो, ये पांच विकार का दान। ये दान में देने से तो गृहचारी छूट जाएगी और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है, सत्युग में नहीं जाकर बनेंगे, यहाँ ही बनना है। पांच विकारों का दान देना पड़ता है। तो बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम कोई भी आश नहीं रखो सिवाय एक आश के, और कोई आश नहीं रखो सिवाय एक आश के। कौन सी, सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की ही आश रखो। बस एक बाप से ही बेहद का वर्षा लेना है, यही आश रखो। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को कोई, इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सारी मुरली इसी पर है बाबा की, कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो, जो दुनिया में मनुष्य आश रखते हैं बाबा कहते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले रहे, बस यही आश, एक शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है, इतना ऊंचा वर्षा लेना है तो कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, तो किसी को भी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि इसमें आत्मा का हनन होता है। काम कटारी चलाना माना आत्मा का हनन, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इससे इसने छोड़ दिया है, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है, तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, बात सीधी है। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनो, नहीं चलेंगे श्रीमत पर तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए पांच विकारों का दान देना है तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, अभी ग्रह लगा हुआ है तो ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं, ग्रहण में काला हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल ही काले बन गए हैं। तो बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते क्या हो गई, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हो। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो क्यों गाते हैं, क्योंकि पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, श्रीमत देना माना जैसे फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। कोई आश नहीं रखो, विकारों को जीतो, क्योंकि इसी से आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाप कहते हैं, तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो, पतित बने हो इसीलिए तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो, कि आप सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। और फिर अपने लिए क्या कहते हैं, हम विकारी हैं, पतित है, मूर्ख खल कामी पापी है। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है, सुख लेना है तो निर्विकारी बनो, निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। तो बाप कहते हैं, अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने, अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, ये इच्छा भी नहीं रखनी है, बहुत धन कमाओ, बहुत नाम कमाओ, कोई जरूरत नहीं। इस समय जितना गुप्त रहे, बाबा कहते उतना अच्छा है, सब कुछ गुप्त है हमारा संगम पर। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि बल करो। उसके लिए बाबा मना थोड़ी करते हैं, धंधा धोरी बल करो, और एक दो को ज्ञान अमृत भी पिलाओ, धंधा भी करो और ज्ञान अमृत भी पिलाओ। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं, कोई भी कामना नहीं रखो। कितनी बार आज बुल्ली में का गिनती करते जाना, कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो याद से ही खलास होंगे, और कोई उपाय नहीं है, याद से ही ये 63 जन्मों के पाप खत्म होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए। बाबा जानते हैं बच्चों में माया के तूफान तो आएंगे, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है, वो एकदम से तो नहीं छूटते हैं, तो माया के तूफान आएंगे, परंतु पतित नहीं बनना है। ये बहुत बड़ी शर्त बाबा देते, पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हो, अब फिर से निरोगी बन रहे हो। अभी अगर रोग आता है तो दुखी नहीं हो जाना, बाबा कहते निरोगी काया मिलेगी, अभी जो है ये हिसाब किताब चुकतू करने लिए आया है। तो बाबा कहते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, कितनी बड़ी आयु थी, 150 साल की आयु थी जब निरोगी थे। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो कोई भी आश नहीं रखनी है। ये सब छीछी आशाएं हैं, जो भी कलयुगी दुनिया के लिए आशाएं रखते हैं, बाबा कहते हैं ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आशा है, कांटे से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आशा है, कौन सी? बाप कहते हैं, मुझे याद करो, बस बाबा की याद हर वक्त रहे, और किसी को नहीं देखना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। सारे भारत तो खास, पर पूरी दुनिया पर राहु का ही ग्रहण है। फिर चाहिए राहु का ग्रहण पूरा चाहिए, पूरा होना चाहिए। फिर क्या चाहिए? राहु का ग्रहण पूरा होगा तो बाबा कहते हैं फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। यही चाहते हैं ना सब, बृहस्पति की दशा हो। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। हमारे ऊपर अभी राहु का ग्रहण नहीं है, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से क्या मिलता है? बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। राहु की दशा बैठ गई है, फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में क्या होता है? बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है और राहु की दशा में दुखी दुख। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है, त्रेता में फिर है शुक्र की दशा, थोड़ा कम, बृहस्पति की दशा से थोड़ा कम शुक्र की दशा। शुक्र की दशा में भी दादी जानकी कहती थी कोई बात नहीं, शुक्रिया 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 करते रहो। तो त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। ये भी समझा दिया है अब सबको वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। बाप को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, हल्के होंगे, सब पाप नाश होते जाएंगे, तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, है ना, कितना कैसी माया है, आत्मा के पंख ही काट दिए। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो और विश्व की बादशाही ले रहे हो। किस आधार पर हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, किस आधार पर स्वर्ग की के मालिक बन रहे हैं? ईश्वरीय मत पर चलकर। मनुष्य मत आसुरी मत पर हम विश्व के मालिक नहीं बनेंगे और न ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। विश्व की बादशाही भी नहीं ले सकेंगे, इसलिए केवल ईश्वरीय मत पर ही चलना है। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। अगर अपवित्र है तो स्वर्ग के लायक कैसे बनेगी? पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बहुत बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। क्योंकि ये मुख्य रूप से ये तीन ही आशाएं मनुष्य रख करके साधु संत महात्माओं गुरुओं के पास देवताओं के पास जाते हैं, आयुष्वान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तो वहां कभी भी धर्म का बच्चा बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? डॉक्टर जवाब देता है नहीं होगा, कोई शारीरिक कारण होगा, तो फिर क्या करते हैं? फिर दत्तक लेते हैं। आजकल तो ये वो भी बहुत कुछ करते हैं, आई भी तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपना बच्चा नहीं होगा, वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाना होगा। बाप कहते हैं आयुष्वान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते। अभी हम जैसे बाबा के धर्म के बच्चे बन गए ना, दत्तक हो गए, अडॉप्ट हो गए बाबा के पास। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता ही नहीं है। अभी बन जाते हैं बाबा के धर्म के बच्चे, तो सतयुग में कोई धर्म का बच्चा की जरूरत नहीं। एक बच्चा एक बच्ची, और वो भी कैसे होगा? योग बल से। एक बच्चा एक बच्ची योग बल से। तो पूछते हैं ना कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है, प्रश्न नहीं करो कैसे योग बल क्या क्या, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी है, सब योगी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। अब योगेश्वर का अर्थ बाबा बताते हैं, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। अब ऐसे नहीं श्री कृष्ण को योगेश्वर तो कहते, पर ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहता होगा। सतयुग में योग में श्री कृष्ण को रहने की क्या जरूरत है, वो तो सर्व प्राप्ति संपन्न है। तो ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण को योग में रहता होगा, वो तो पूरा पवित्र योगी है, पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। योगेश्वर क्यों उनको कहते हैं? क्योंकि इस समय बाबा ने हम सबको योगेश्वर बनाया है, तो फिर वो जो स्टेटस है वो जैसे श्री कृष्ण को मिल जाता है, योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी होती है, भोगियों की आयु तो छोटी होती है। भोगियों की आयु छोटी क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति सब नष्ट करते हैं। तो नष्ट करते हैं तो फिर शरीर की आयु लंबी कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। भगवान ने हम सबको योगी बनाया है। योगी अथवा और क्या नाम देंगे योगी को? योगी अथवा ऋषि, योगी अथवा ऋषि। तो योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं, ऋषि भी पवित्र होता है। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राज योग। राज ऋषि कैसे? बाबा कहते राज योग सीख रहे हो, या राज योग सीखने वाले सब राज ऋषि। राजाई पद पाने के लिए राज ऋषि, राजाई पद पाने के लिए राज ऋषि बनते हो, पवित्र बनते हो। राजाई पद पाने के लिए इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। कौन सी आश? कि बच्चा पैदा हो। कोई ऐसी आश नहीं रखनी है कि हमको बच्चा पैदा हो। दुनिया में बहुत ही आश रखते हैं, माताएं तो खास आश रखती है, मैं माँ बनूं, मैं माँ बनूं। हाँ, बाबा ने तो हमको सबको जगत माता बना दिया ना। सचमुच सचमुच बाबा ने ऐसे बना। हमारी जब पहली बट्ठी हुई थी, हम पहली बाबा की अव्यक्त होने के बाद कन्याओं की बट्ठी को ट्रेनिंग रखी थी। सब कॉलेज की कुमारियां आई थी उसमें ट्रेनिंग करने। तो बाबा ने उस समय बहुत सुंदर बात कही थी अव्यक्त बाबा ने, बच्ची तुम सब जगत माताएं हो, कभी भी अपने को कुमारी नहीं समझना, जगत माता हो। तो जगत माता माना सब हमारे बच्चे जैसे। फिर उसके बाद माताओं की बट्ठी हुई, तो माताओं की बट्ठी में बाबा ने क्या कहा? हर एक अपने आप को ब्रह्मा कुमारी समझे, सब कुमारियां हो। तो माताओं को कुमारी बना दिया और कुमारियों को जगत माता बना दिया। देखो ये बाबा की जादूगरी है। तो बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में तो जाना पड़ेगा ना। काम कटारी चलानी पड़ेगी अगर बच्चा चाहिए तो। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। तो बाप समझाते हैं पवित्र बनो, ये आत्माओं से बात करते हैं, देह से बात नहीं करते बाबा, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। इतना सुख बाबा देते हैं तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो क्या और टाइटल है बाबा का, बाप तो गरीब निवास है। गाया भी जाता है, सुदामा ने दो चपटी चावल दी, चपटियां ऐसे हाथ में डाल करके देते ना, ये चपटी होती है। तो सुदामा ने दो चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, ये भी समझते हो। और क्या समझते हो कि अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, अब क्या मदद कर सकते हो, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो। बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आ करके समझो। हम एक सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं, एक सेकंड में। वो डॉक्टर अपना बोर्ड लगाता है ना, पर ये बोर्ड लगा दो, एवर हेल्दी बनना एक सेकंड में हम बनाते हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं एक सेकंड में। तुम सर्जन हो ना, बहुत बड़ा और टाइटल मिल गया, तुम सर्जन हो ना। सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर ये बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको दो बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, बेहद का के बाप को याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। इसलिए पहले पहले परमात्मा का परिचय बाबा कई बार देते, एग्जीबिशन में समझाओ। तो म्यूजियम में देखो, सबसे पहले परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय बाद में। तो बाबा कहते हैं माँ एकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का फिर चित्र दिखाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो है, दो अक्षर कौन से बाबा बदलाते, अलफ और बे, बस अक्षर ही दो है। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। इस याद से ही खुशी में रहेंगे। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। फिर वही बात, इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। क्या हमारा पुरुषार्थ है, जीते जी मरना। वो तो मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ कहते हैं, भाई मर गया माना स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कभी भी रोएंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। पीटते हैं ना, अपना सिर पीटते हैं, सिर लेकर के वो दीवार पर भी सिर पीटते हैं, ऐसे भी सिर पीटते हैं, पर छाती भी पीटते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई ऐसे पीटेगा नहीं अपने आप को। बाप को याद करने से तुम कभी रोएंगे नहीं, कभी पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। दुखी नहीं हो जाओ अगर माया के तूफान आते, बस अशरीरी बन जाओ। बनने की कोशिश करो तो तूफान खत्म हो जाएंगे। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त तुम्हें टाइम जाता है ना। बहुत तूफान आए तो कितना टाइम उसमें जाता है, क्योंकि लड़ते रहते हैं उन तूफानों से। तो बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएंगे, वो रुकेंगे थोड़ी। कोई भी बात आती है पास हो जाती है, कहां तक रुकी रहेगी, वो तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़ी रहेंगे तूफान। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाबा को याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। और सब को भूल जाओ, ये सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को सबसे पहले यही शिक्षा दी भगवान ने, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो, बाबा अब तो सिर्फ आपको ही हम याद करेंगे। कहो बाबा को, बाबा हम केवल आपको ही याद करेंगे, आपको ही सिर्फ याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचयिता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को जानते हैं, सब जानते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये भी बुद्धि में है। अभी हम फिर जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। अभी जा रहे हैं, फिर स्वर्ग में आके पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है, शरीर को राज्य नहीं मिलता, ये शरीर नहीं राज्य करेगा, आत्मा को राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं, ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व का मालिक बने हैं। याद करो कितनी बार विश्व का मालिक बने हम, अनेक बार विश्व का मालिक बने हैं। फिर नर्कवासी भी अनेक बार बने, खाली स्वर्गवासी अनेक बार नहीं बने, नर्कवासी भी अनेक बार बने। अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, तो इसीलिए इस याद को बाबा क्या कहते हैं, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। अग्नि में सब भस्म हो जाता, तो इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर से बाबा ने याद दिलाया, क्या है हमारा टाइटल, तुम हो राज ऋषि। सब राज ऋषि हैं, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, ऋषि माना पवित्र। बाप को याद करते और वर्षा लेते हैं बाप से, राजाई का वर्षा। अभी थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, राज ऋषि बन गए, राजाई के लिए ऋषि बने हैं, पवित्र बने, अभी थोड़ी कोई विकारी बनने की आश रखनी है। ये छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है, बीमार होते भी याद कर सकते हो। ऐसे कोई नहीं सोचे हम बीमार है कैसे याद करें, चलो बीमार है बेड पर है, हाँ डॉक्टर ने मना किया है बस रेस्ट करना है, तो फिर मनसा तो याद कर सकते ना, मनसा को किसने रोका है। तो मनसा लेते लेते भी सारे विश्व को आप सकाश दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, बाबा को कितने अंत तक बाबा ने पत्र लिखे, अंत तक 18 जनवरी की शाम भी बाबा कैसे 4 बजे गए और ईशुदादी को कहा कि क्योंकि पोस्ट आती है शनिवार का दिन था तो पोस्ट आई थी, तो बाबा ने कहा आज ही सबको जवाब देना है। दादी ने उनको कहा बाबा कल संडे है, कल रविवार है, कल पोस्ट नहीं जाएगी, अभी पोस्ट नहीं जाएगी, तो कल ही लिखना। बाबा ने कहा नहीं आज ही लिखना है। तो देखो बाबा किसी का भी पत्र छोड़ते नहीं थे, जरूर जवाब देते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखना पड़ता है, शिव बाबा लिखवाते हैं, शिव बाबा लिखवाते थे ना फटाफट फटाफट, बड़े बड़े अक्षर लाल पेंसिल से बाबा लिखते थे, छोटे छोटे कागज, कोई लंबे लंबे कागज नहीं होते थे, छोटे छोटे कागज और एक एक मिनट में एक पेज पूरा, और बाबा लिखते जाते थे, शिव बाबा लिखवाते थे। तो बाबा कहते कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो। उस दिन भी बाबा ने कहा ना शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, बस शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा माउंट आबू आ जाता था पत्र, यहाँ पोस्ट ऑफिस वाले जानते थे कि ये शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कुमारियों के लिए पत्र है। तो बाबा कहते हैं तुम भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं, रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। क्यों पतित पावन उनको कहते हैं, क्योंकि रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन, सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ, सबको पावन बनाता हूँ, ऐसे नहीं किसी को छोड़ दो और वो पतित ही रह जाए सृष्टि पर, नहीं सबको पावन बनाता हूँ, किसी को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है, ऐसे नहीं खाली आत्मा ही पावन बनती, प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी, अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वो तो होगी, कैसे होगी आत्मा पावन, योग अग्नि से। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस कलयुगी दुनिया में क्या है सार, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया की आशाएं सब उल्टी आशाएं हैं, कोई भी उल्टी आश इस कलयुगी दुनिया में नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है, एक आश केवल, कौन सी, पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंत मति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गवाना है। वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, केवल सेवा, बाबा की सेवा सेवा ना, जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना ये भी क्या है, छोटी छोटी बातों में इतना समय गंवाते हैं, सोचते रहते हैं, मन भटकता रहता है। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में समय देना ये क्या है, ये भी गुड़ियों का खेल है। बच्चे गुड़ियों का खेल खेलते ना, तो ये छोटी छोटी बातों में समय देना ये गुड़ियों का खेल है जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। छोटी छोटी बातों में समय, छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करो, तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो, तभी तो औरों पर प्रभाव पड़ेगा ना। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। ये अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। हर रोज बाबा उसके लिए कितने उपाय देते हैं। समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे बठिया करो, चाहे आपस में संगठित होकर रूरिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। छोटी छोटी बातें परिवर्तन हो जाएगी, बस समय शक्ति बर्बाद मत करो। मैं देख रही हूँ कितनी टीचर्स आ गई है, जो नीचे से टीचर्स आ